आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत में की रैली, कहा जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी बात सुनती है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 8 सीटों पर 91 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, कल नाम वापसी की प्रक्रिया हुई पूर्ण। नव संवत्सर के साथ चैत्र नवरात्र की हुई शुरुआत, आज माँ आदिशक्ति के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की जा रही है आराधना। और कल नहीं दिखा ईद का चांद, 11 अप्रैल यानी कल मनाया जाएगा ईद का पर्व। और अब समाचार विस्तार से। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न दलों के नेता जनसंपर्क और जनसभाओं के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पीलीभीत में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी बात सुनती है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने दिखा दिया है कि उसके लिए कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि भारत संकल्प कर ले तो वे निश्चित रूप से उसे हासिल करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रेरणा और ऊर्जा के साथ उनकी सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है।
जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं तो नतीजे भी सही मिलते हैं। आज हम चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। कहीं 4 लेन 6 लेन 8 लेन के हाईवे बन रहे हैं, कहीं भव्य रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कहीं वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कृषि उत्पादन में पीलीभीत के महत्व का उल्लेख किया और किसानों के हितार्थ किए जाने वाले सरकार के प्रयासों की चर्चा की। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम बदलते भारत को देख रहे हैं, जहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी योजनाएं भी हैं और गरीबों के कल्याण के लिए भी योजनाएं हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 8 सीटों पर कुल 91 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कल नाम वापसी के आखिरी दिन कुल 8 संसदीय सीटों से 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया। इनमें मेरठ में 1 और अलीगढ़ में 2 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं। दूसरे चरण में इन 8 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें मेरठ की महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं। इनमें मेरठ जनपद की 4 विधानसभाओं मेरठ कैंट, मेरठ किठौर, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण समेत हापुड़ विधानसभा शामिल है। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 20,530 मतदाता हैं। इनमें 10,75,368 महिला मतदाता और 9,25,022 पुरुष मतदाता और 140 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा ने अरुण गोविल को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने 2 बार अपने प्रत्याशियों के नाम बदले और आखिर में पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले एडवोकेट भानु प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनका टिकट बदलकर सर्दना विधायक अतुल प्रधान को दे दिया गया। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन उनका टिकट काट दिया गया और सपा से सुनीता वर्मा ने नामांकन किया। वहीं बसपा से इस सीट पर देवव्रत त्यागी चुनावी मैदान में। संगीता श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, मेरठ।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पीलीभीत के अलावा हापुड़ और रामपुर में जनसभा को संबोधित किया। रामपुर में पार्टी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में जनसभा करते हुए श्री योगी ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित रामपुर जरूरी है। हापुड़ में गठबंधन प्रत्याशी कुंवर सिंह तंवर के समर्थन में जनसभा करते हुए श्री योगी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है और भारत की सीमा सुरक्षित हुई है। शामली में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भाजपा रालोद के संयुक्त प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर किसानों का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है, वो सरकार किसानों का शोषण नहीं कर सकती। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कल रायबरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रायबरेली और अमेठी सीट पर जनता की इच्छा के अनुरूप उम्मीदवार जल्द उतारे जाएंगे। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन किया है। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट 12 की भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा 6, 7 और 8 मई को होनी थी, अब ये परीक्षा 24, 25 और 26 जून को होगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा 9, 10 और 13 मई को होनी थी, अब ये परीक्षा 27, 28 और 29 जून को होगी। इसी तरह 4, 5 और 6 जून को होने वाली जेई भर्ती की परीक्षा अब 5, 6 और 7 जून को होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। चैत्र नवरात्र के साथ कल से ही नव संवत्सर की शुरुआत भी हो गई। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के इस अवसर पर आस्था और उल्लास के वातावरण में प्रदेश भर के दुर्गा मंदिरों में ब्राह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नवरात्र के पहले दिन कल मां आदिशक्ति के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की गई। आज मां के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है। कल मिर्जापुर जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में बीती आधी रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहां देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं। बलरामपुर जिले में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर भी श्रद्धालुओं ने मां का दर्शन पूजन किया। यहां देश के विभिन्न हिस्सों के साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर के देवी मंदिरों और घरों में मां की आराधना कर मंगल कामना की जा रही है। नव संवत्सर के अवसर पर कल अयोध्या में श्रीराम जन्मोत्सव के लिए रामलला का श्रृंगार कर नए वस्त्र धारण कराए गए। अपने आराध्य का नए वस्त्रों में भव्य दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। प्रस्तुत है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
कल मंगलवार को अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में चांदी की चौकी पर अभिजीत मूर्त में चांदी का कलश स्थापित कर 9 दिवसीय अनुष्ठान शुरू किया गया और अलग अलग समूह में वैदिक आचार्य श्री रामचरितमानस का नवापरायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, दुर्गा सप्तशती, राम रक्षा स्त्रोत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं। इसी के साथ अयोध्या के सभी मंदिरों में वस्त्र आदि बदल कर श्रृंगार करके रामलला को शोभायमान किया गया। शाम होते ही जन्मोत्सव के बधाई गान मंदिरों में गूंजने लगे और देर रात तक जगह जगह रामलीलाओं के मंचन और प्रख्यात कथावाचकों के प्रवचन से वातावरण धार्मिक हो रहा है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
ईद का चांद कल नहीं दिखाई दिया, इसलिए आज रोजा रखा जाएगा। ईद का पर्व कल यानी 11 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लखनऊ में कहा कि कल ईद उल फितर का चांद नहीं दिखाई दिया। उन्होंने तमाम नमाजियों से अपील की कि ईद के दिन ईदगाह आकर नमाज अदा करें। ईदगाह में नमाज सुबह 10 बजे से होगी, सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। NTA की ओर से NEET UG 2024 के लिए विद्यार्थियों को आवेदन का एक और मौका दिया गया है। NTA की ओर से जारी नोटिस के अनुसार NEET UG के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज अंतिम तिथि है। आवेदन का शुल्क आज 11:50 तक जमा किया जा सकेगा। वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत में की रैली, कहा जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी बात सुनती है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 8 सीटों पर 91 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, कल नाम वापसी की प्रक्रिया हुई पूर्ण। नव संवत्सर के साथ चैत्र नवरात्र की हुई शुरुआत, आज माँ आदिशक्ति के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की जा रही है आराधना। और कल नहीं दिखा ईद का चांद, 11 अप्रैल यानी कल मनाया जाएगा ईद का पर्व। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।